ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो इन सबके हम ऋणी हैं, इन देवताओं के जो यहां के प्रभु हैं, प्रबंधक हैं, इनसे हम बाइज्जत निकलने के लिए इनकी मजदूरी हमने करके अपना यहां भी काम चलाना है, इनका टैक्स भी भरना है, तब हमारी भक्ति सही चलेगी। तो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, इन देवी देवताओं की मजदूरी है, ये पूजा नहीं है। अब यहां भी एक स्पष्ट करना चाहेगा दास के भक्ति पूजा और साधना मंत्र क्या है। साधना तो एक मजदूरी होती है और पूजा एक हृदय से समर्पित भाव होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम हैं। अब जैसे पतिव्रता लड़की होती है, वो अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार होता है, जैसे जेठ भी, जेठानी भी, देवर भी, देवरानी भी, सास ससुर भी, ननद भी, सभी होते हैं। तो वो सबके साथ प्यार से व्यवहार करती है, रिलेटिव आता है उनसे भी आदर से सत्कार से हंसकर बात करती है, चाय पानी, उसके बिस्तर छाना, पूरी सेवा करती है। तो वो लड़की वो सबका सत्कार कर रही है, उनकी पूजा नहीं कर रही, वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। जो पति वाला भाव है वो अन्य में नहीं हो सकता उसका, लेकिन सत्कार सभी का करती है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा ये जितने भी यहां के प्रबंधक हैं, ये हमारे एक परिवार है अपना, और इस परिवार में हमने सबका यथोचित आदर करना, सत्कार करना शिष्टाचार है। इसको नहीं करेंगे तो भी हम दोषी हैं, हमने कमी आत्मा है, और हमने बनना है अच्छी आत्माएं। तो अच्छी आत्मा तो सभी को नमन करती है, वे नम्र भाव रखते हैं, सबके प्रति एक श्रद्धा रखते हैं, लेकिन पूजा जो वो अलग चीज होती है। अब जैसे जब हम यहां से चलेंगे, जैसे एक पतिव्रता लड़की परिवार में रह रही है, जैसे आपको बताया, तो पूजा तो अपने पति की कर रही है वह, लेकिन पता उस दिन चलेगा जब वो अलग होंगे, भिन्न होंगे। जब वो अलग होंगे, न्यारे होंगे, तो वह लड़की के हिस्से में जितने भी बर्तन आवेंगे, कोई चारपाई, गदला, रजाई आवेगी, वह उठाकर सारे अपने उस कमरे में रख लेगी जो उसके पति के हिस्से में आया है, और एक चम्मच भी ना छोड़ा अपने हिस्से की, सारी ठाक अपने पति के साथ चली जाएगी। तो उस दिन पता चलेगा वह पूजा किसका करे थी, वो पूजा अपने पति की करे थी और सत्कार सभी का करे थी। इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सब का सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहां के, जैसे असुर निगंद रमैणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर पांचों तत्व तक की आरती इसके अंदर आ जाती है। तो हम सबका सत्कार करते हैं, सत्कार करने से विनम्रता आती है। और ये फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी कोई भी है देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज्यादा सजा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफर में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता, और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे जो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है कहीं शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उत्सुक होगी, किसी सुविधा में कमी आगी, तुम्हारी खैर नहीं है, तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो। और एक बार जरा सा भी कोई उकचुक कर दे, दो मिनट में पुलिस जाएगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आसन बरवारा जिला हिसार हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहां ऐसे खड़े रहा करेंगे देवी देवता, चारों तरफ घूमया करेंगे आपके, कि देखो भूत प्रेत आकर बकवाद ना कर दे। तो यहां के जो मंत्री प्रधानमंत्री है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल, ये भी थर थर कांपते उस परमात्मा से। काल डर करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता भाई पगर डर से। कृपदास जी कहते हैं कि काल डर करतार से, करतार कौन है, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। नानक साहब जी कहते हैं 721 पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित उनकी वाणी, एक अर्ध गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर क्रीम तू बे ए परवरदिगार। तो यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, काल डर करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार ऐसी ही से। जोरा माने मौत है। एक तो जरा शब्द है, जरा संस्कृत में उसको बुढ़ापा कहते हैं, एक जोरा है संत भाषा में, ये मौत को कहते हैं। कहती है मौत भी उस कबीर भगवान की जूते साफ करती है कि जब आपका आदेश होगा तभी मैं किसी के आपके भक्त के निकट जाऊंगी, ना निकट नहीं जाऊंगी। और ये काल परमात्मा से डरता है। काल जो पीसे है पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। पुण्यात्मा ये बात कोई छोटी है नहीं है। आम आदमी कोई भूत प्रेत के बारे में गलत नहीं बोल सकता, देवता के बारे में नहीं बोल सकता, और ये स्पष्ट कहा गया है के यु काल तपिसे पीसना, यानी पहले राजाओं के नौकर जो होते थे, कोई तो उनके आटा पीसा करते थे और कोई पानी भर के लाया करती किसी की, और जो नागरिक औरतें उनको पैसे दे देते थे, मजदूरी देता था राजा। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, ये तो कबीर भगवान का पीसना पीसता है, यानी उसका नौकर है, उसके आदेश से चलता है। सब कुछ समझाने के लिए ये सब वाणी बोली है। काल जो पीस है पीसना, यानी चाकी पीस चलाता है हाथ से, और जोरा है पनिहार, या मौत उसके पानी भरती है परमात्मा के, यानी नौकरानी है, और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। क्योंकि आंखों देखा भगवान की महिमा से परिचित होकर गरीबदास जी कह रहे हैं। तो यहां प्रसंग जो चल रहा है कि सत्कार और पूजा और साधना में, इत सत्कार में अंतर होता है। साधना और पूजा में अंतर कैसे होता है, एक और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे हम ये मंत्र जाप करते हैं, बाकी एक नाम को छोड़ के सार नाम को, बाकी तो ये अन्य मंत्र यहीं के हैं सारे, कुछ आपको पता ही है, लेकिन हमारा उद्देश्य, ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे औजार हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, तो हैंडपंप लगाने के लिए हम जो भी साधन प्रयोग करेंगे वो तो साधना है, वो हमारी पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, यानी उस जल को पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, जिसकी जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो उसके लिए जो भी हम बोक्की और पाइप मेहनत परिश्रम जो करेंगे उसको लगाने के लिए, तो वो तो समझो साधना है। और जिस वस्तु को पाना है वो हमारा पूज्य है। अब यहां इस तीन नाम के मंत्र का थोड़ा सा और प्रथम मंत्र का, अब ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे, कैसे हेल्प करेंगे। प्रथम मंत्र जो आपका है, कहते हैं पांच नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र के जाप करने से आपके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की तरफ बनी रहेगी, और ये ऐसा धन है जो आपके यह संसारिक सुख भी आपको देगा, और आपके ऊपर जो ऋण है इन देवी देवताओं का, जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, तो बिजली का टैक्स भरते रहेंगे तो रेगुलर आपके बिजली आती रहेगी। ऐसे हमने कोई पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस का कनेक्शन ले रखा है, और टेलीफोन का ले रखा है, तो हम उनके कनेक्शनों के पैसे भरते रहेंगे बिल के, तो हमें सुविधा प्राप्त रहेंगी। तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके निर्धन हो गए, हमारे सारे कनेक्शन कट गए, तो सभी सुविधाएं बंद होगी। अब ये दास एक गारंटर बनेगा आपका, आपका जिम्मेदार बनेगा, और आपको एक ऐसी मजदूरी देगा, उनसे आपकी सुविधा चालू कराएगा सारी, और ये कहा जाएगा कि ये आपको किस्तों में आपकी सारी पूंजी पूरी करेंगे। आपको बार बार प्रेरित किया जाएगा कि मंत्र करा करो, जाप करा करो, तो वो जाप करने से आपकी जो सुविधा देनी इन्हीं भगवानों ने है, क्योंकि ये यहां के इंचार्ज है, और आपकी ये देंगे क्या, वो वर्क डन कौन सा, वर्क डन किया कर्म कौन सा, जो शास्त्र अनुकूल साधना से प्रतिफल आपका बन कर जाएगा वो आपका वहां मिलेगा, और देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेशी। तो ये आपको तभी देंगे जब आप सही साधना शास्त्र अनुकूल करेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना के अंदर प्रथम गुरु हो, गुरु पूरा हो, अधिकारी हो, उससे नाम लेकर फिर आप जाप करो, फिर आपकी सुविधा चालू हो जाएंगी, उनका टैक्स भी भरता रहेगा और आपका भी गुजारा होता रहेगा, यानी जब तक यहां रहोगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए समझ लो आपने प्रथम मंत्र तो ऐसा है कि जैसे आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, वो हैंडपंप लगाने के लिए, वो आगे थे। अब वो काम क्या करेंगे, अब सेकंड मंत्र है सांस उश्वास का। प्रथम मंत्र से समझ लो पाइप आ गई, और सेकंड मंत्र का काम शुरू हो गया, पाइप ने खड़ा करके और उसके अंदर बोकी मारे और बाहर माटी निकाले, बोकी मारे बाहर माटी निकालता जा। तो हम श्वास उश्वास का नाम जो जाप आपको दिया गया सतनाम के दो अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक सांकेतिक तत् है, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत, ओम और तत् मिलकर ये एक सतनाम बनता है। तो इस दो अक्षर का नाम है सतनाम, इस दो अक्षर के मंत्र का नाम सतनाम, सतनाम माने सच्चा नाम, इसको सतनाम भी कहते हैं, सच्चा नाम भी कहते हैं। तो इस सतनाम का काम है दो अक्षर के का, जैसे एक मंत्र बाहर छोड़ते एक अंदर लेते, तो ऐसे बोकी नीचे मारी बाहर निकाली, बोकी मारी नीचे बाहर निकाली मिट्टी, और फिर धीरे धीरे पाइप नीचे जाती गई, पाइप पहुंचगी जल तक जहां जल आ गया। तो ये काम हो गया सतनाम का, बोकी ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद फिर सारनाम, उस सार शब्द का काम शुरू होगा, वो रह गया हैंडपंप जो ऊपर मशीन लगाया करे, ये सार नाम कहो, सार शब्द कहो, आदि नाम कहो, इसकी भी मेहनत करनी है, इसको भी चलाना पड़ेगा, तभी वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जब जल सर मिलेगा आपको। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि तीन मंत्र का जाप है, उस जल को पाने का ये मंत्र है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा? अब प्रथम मंत्र आपको दे रखा है, तो प्रथम मंत्र और लास्ट मंत्र इनकी जो कमाई है ये आपकी सेव रहेगी, सेफ रहेगी, बचत रहेगी। और बाकी जो पांच नामों की कमाई है, साधना है, ये हम प्रथम जाएंगे जब आत्मा हृदय कमल से चलेगी। हृदय में रहती है आत्मा का मूल वास, यहां पर है। जागृत में फिर या नेत्रों के पास आ जाती है, यहां बैठकर सारा कंट्रोल करती। जब हम चलेंगे तो हम सीधे मूल कमल पर जाएंगे। वहां पर गणेश जी की चौकी है, वहां बैरियर है, तो वहां जाकर के हम जब पहुंचेंगे गुरु साथ होगा। जैसे वकील होता है तो उसके साथ साथ वो सारे काम कागज पूरे करता हुआ, अकाउंट क्लियर कराता हुआ आपका आगे चलता, जैसे सीए होता है, यू समझ लो। तो परमात्मा की आपको वहां से लेकर आखिर तक आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां आप जब जाओगे परमात्मा पहले ही आपके सारे अकाउंट क्लियर करवा के इनसे और त्रिकुटी में बैठा पाओगे आपको। जब आप यहां से चलोगे संसार छोड़कर मूल कमल में जाओगे जहां गणेश जी का कमल है, तो वहां आपके अकाउंट क्लियर सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दे दिया जाएगा। चलो जी जाओ, आप कागज पूरे आपके, जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहां से आपको क्लीन चिट तार में लगी, आप जाइए। फिर इसमें ना भी कमल में आओगे विष्णु जी के कमल में, फिर यहां से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर, जाइए हृदय, फिर कंठ कमल, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब जैसे आप यहां गुरुजी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहां रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए मिले जब दंडवतम बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। आप परमात्मा ने यह सिद्ध करना हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाओगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो रात में सोपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे आपको सोपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहां वहां तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरुजी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र चित्र देखे हैं उनके, तो वहां जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो लाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहां पर। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रहकर चले गए यहां पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाए का काम करे, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़ों में घूमे फिरे सारा काम करे, तो हमने सोचे जन साधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो तो जैसे ही उस समय भगवान होते इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपके अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है दास के प्रति जैसा आपकी भावना जैसे आपके विचार आपकी श्रद्धा है तो आपकी वहां बुक में लिखे जा रहे परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से पैड है आपकी बही है आपका अकाउंट खुला हुआ है एक फैक्स वहां जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहां प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे जैसा आप यहां कर रही हो एज इट इज फिर वहां से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा वहां से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहां अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहां ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक और फिर वहां आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश कराकर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए हमने धोखे खाए उससे बचने के लिए अब ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं इसमें दृढ़ रहना बच्चों बार बार यही आपको बताया जाता है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां ये नीचे के मंत्र तो हो गए साफ कंठ कमल तक सारे आपका हिसाब किताब हो गया आपके साथ वो दो मंत्र का जाप वो और साथ है। यहां कंठ कमल से लेकर त्रिकुटी तक जाने का बहुत लंबा रास्ता है ये तो एक यहां तो मैप है वहां ओरिजिनल चीज है। तो वहां जाने के बाद जब आप पहुंचोगे तो दो मंत्र आपके पास होंगे तीन मंत्र होंगे उनकी कमाई आपके साथ होगी। ओम तो ब्रह्म का है और दूसरा जो मंत्र सांकेतिक आपको दिया जाता है सतनाम है वो अक्षर पुरुष का मंत्र है सात संग ब्रह्मांड के स्वामी का। अभी तक हमारे को दसवां द्वार का ही ढोल पीटा गया ऋषि वैरिषियों के द्वारा और एक जम्मू के अंदर मधुपरम हंस को आवे कबीर पंथी को और कह का पता नहीं इसने और वो कबीर साहब की किता अधूरी सी बाणी पढ़ ली गर्मी खड़की एकादश और वो छाती कुट्या करता ने कहा था मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं इस ब्रह्मांड में जो वस्तु है मेरे पास नहीं और गर्मा द्वार पा गया गर्मा द्वार इसे किसी ने बताया नहीं कमाल के आदमी है ये तो कबीर सागर में लिखा है आपने पढ़ लिया तो कला टूट गया भक्ति आपके पास नहीं ज्ञान तुम्हारे पास नहीं जबकि कबीर साहब ने तो बर्मा द्वार बताया है गर्मा नहीं है गर्मा तो अक्षर पुरुष के लोक में जाता है इसने उसका भी ना पता सुन रखी है गर्मा द्वार एकादश खिड़की लगी। अब क्या है जो ओम नाम के जाप का कमाई है वो वहां त्रिकुटी पर अकाउंट करवा दिया जाएगा धर्मराज के दरबार में जाएंगे परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में और उनसे कहेगा भी इसका हिसाब करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में आपका विधान है क्योंकि वहां जैसे वकील बताते हैं जजों के सामने जी ऐसा सब उस धारा में ऐसा लिखा है ये खरा उतरता है तो जज उसको स्वीकार करता है। तो जाते ही अब जैसे कबीर साहब के एक शब्द है कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो गुरु एक वकील का भी काम करेगा आपका। तो वहां जाकर के भगवान होंगे इस दास के रूप में और वहां उनको कहेंगे जी आपके विधान में लिखा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामी माशुच। इसका अर्थ इन्होंने गलत कर रखा आज तक के अनुवादकर्ताओं ने। इन्होंने क्या कर दिया श्री कृष्ण जी कह रहा है ये श्री कृष्ण मान रहे थे कि तू सब धर्मों की सब पूजाओं को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं आपका दास हूं मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही मैं युद्ध करूं कि ना करूं मुझे सीधा मार्ग बता दो आप मेरे गुरु मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन तो पहले उसकी शरण में था ये सट्टे मारे तो कई नकल तो थी इनमें। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है गीता ज्ञान दाता कहता है अपुण आत्माओं दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाओ। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, एक बे दो बे सौ बे बताऊंगा, अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। ये झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो वह सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप, सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कह दिया, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में आठवें अध्याय के 5 और 7 में कह दिया कि मेरी शरण में रहना है, तो मेरा आठवें अध्याय के 13वां श्लोक में मंत्र बता दिया, ओम नाम का जाप है, इसको कर, युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। अब ये 18वां अध्याय लास्ट अध्याय है, लास्ट ये मंत्र चल रहे हैं, अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय गीता अध्याय 18 के श्लोक में 62 में उसने कहा। अब 63 में वो कहता है कि अर्जुन इब तू सोच विचार कर ले, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान आज तक किसी को नहीं बताया वो तेरे को बता दिया। ये गीता का जो ज्ञान है ये अति रहस्य युक्त था, यो आज मैंने तेरे को बताया था, कभी पहले बताया था सूर्य को और आज मैं तुझे बता रहा हूं। सूर्य ये आग का गोला नहीं, एक देव है अलग से, जैसे बिजली महकमे का बिजली का अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं ऐसे। तो कहता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब तूने जैसा अच्छा लगे वैसा कर ले। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा था, कहा कि एक और गुप्त बता देता हूं कि जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने कहा कि उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है, ये तेरे हित में बता रहा। 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में आना है तो मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, चिंता ना कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कहा है यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मानुपरितज माम। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि आपने 18वें अध्याय के 62 में मैं जिसके बारे में मैंने कहा श्लोक में, उसकी शरण में जाना है, सदा जन्म मृत्यु से रहित हो जाना है, कंप्लीट आपने पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहता है, तो मेरे सतर की 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है सर्वधर्मान परितज माम, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं, इसके सतर की कौन सी पूजाएं हैं, ये पांचों यज्ञ करते हैं, ओम नाम का जाप आज आप श्वास से जो जाप करते हैं, ये उसके सतर की ब्रह्म के सतर की भक्ति पूजाएं हैं, ये मुझे छोड़ दे मुझे दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते ये लोक धर्म अविश्य विवर्ति अवेश्वर। अब यहां पुणात्माओं एक 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देते हैं कुछ भ्रमित नकली संत गुरु, वो कहते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 के बारे में रामपाल नहीं बोलता, अब उसके बारे में बोलने का विषय जब आए तभी बोला जाता है, उसमें क्या बताया है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, और ये इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है, आत्मा किसी की मरती नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कि वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहा है कि लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा सुनी सुनाई, जैसे लोक वेद हम सुना करते राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के, कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, सारे ब्रह्मंडो गिरतने वाले हैं, फलानी पूजा कर लो, श्राद्ध निकाल लो, भूत पूजा कर लो, तो ये था लोक वेद दंत कथा जो शास्त्र प्रमाणित नहीं था। तो इसी ऐसे ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। कबीर साहब हमें उदाहरण देते हैं कि पीछे लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। तो लोक वेद माने दंत कथा के आधार से जो साधना करते हुए हम भटक रहे थे उसमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने सत साधना रूपी और सही नाम ज्ञान रूपी एक दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी, उसकी रोशनी में हम गड्ढों में झाड़ दंखाड़ों में नहीं गिरेंगे, सीधा रास्ता पकड़कर निकल जाएंगे। तो जैसे दास पहले श्री कृष्ण का पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, तो वो था लोक वेद के आधार से। फिर सतगुरु ने दीपक दिया, पूज्य गुरुदेव मिले राम देवानंद जी, तो उसके आधार से दास सीधा चला। तो यहां परमात्मा हमें बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और इस भक्ति रूपी सफर में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आवे हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोक वेद के आधार से, दंत कथा से। लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उद्धारत है, यह लोकतर्म अविषय विवृति अवैश्वर है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर रखा है, तो कोई और है। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है कि सर्व धर्मान परित्यज्मा, मेरे सत्र की सब पूजाएं छोड़ दे, मुझे दे दे, तो हम वहां ओम नाम के जाप की कमाई उसको दे देंगे। त्रिकुटी पर इसके लेखाकार धर्मराज के दरबार में जमा करा देंगे, ये वहां से आपको बरी कर देगा। अब आगे लेके चलेंगे परमात्मा आपको। अब दसवां द्वार तो इस एक पिंड और ब्रह्मांड के अंदर रह जाता है, शरीर उसी का एक प्रारूप है, इससे आगे निकलेगा फिर सूक्ष्म रूप से, फिर जाएगा गर्भ द्वार पे। दसवां द्वार जाके ब्रह्मरंध्र खुल जाने के बाद दसवां द्वार फिर एक हो जाता, जैसे एक तो द्वार का इधर का हिस्सा एक सामने का, तो इसलिए इसको भौर गुफा भी बताते हैं, हरेक उसमें भौर गुफा होती है। तो इसका लास्ट आखिरी एंड जो दसवें द्वार का जाके समाप्त होगा गर्म में द्वार, आगे जाके गर्म द्वार पाओगा, जहां इस अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। वो गर्मा द्वार है, 21 ब्रह्मांड एक पूरा पैक्ड है, सात संग ब्रह्मांड अलग से पैक्ड है, तो उनके बीच में एक ही द्वार है और सामने वाले में भी एक ही द्वार है। वो तो वो द्वार ऐसे घूम कर जाता है और उसमें जाके खुलता है। तो गर्मा द्वार जो है सर्पुरुष के 21 ब्रह्मांड पार करके से निकलेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष वाले, वो गर्मा द्वार है। फिर अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए सात संग ब्रह्मांडों को हम पार करके आगे जाएंगे, वहां जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम के अंदर दो अक्षर में जो एक मंत्र है ओम से दूसरा, इसकी कमाई हम वहां जाएंगे और उसके सात संग ब्रह्मांडों को पार करने का वो टैक्स है, उसका किराया है। अब हमारे पास रह जाएगा सत सार नाम की कमाई, उसको लेकर हम फिर गर्मा द्वार पार करके बर्मे द्वार को पार करेंगे, वो सतलोक में प्रवेश करावेगा और ये सत नाम सार नाम की कमाई हमारे साथ वहां जाएगी। ऐसे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गे तो हर ना करे सहाय। अब रामानंद जी का प्रकरण अभी बहुत शेष रह गया है, फिर आगे बताएंगे, क्योंकि इन महापुरुषों को आधार बनाकर आपको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया जाता है। ये सत्संग का उद्देश्य होता है कि उसमें सत्य ज्ञान ही बता जाए। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं, और परमात्मा की तड़फ में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तड़फ में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहां मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूं। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूं, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मानकर कर रहे होते हैं, चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है, और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है, वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा, तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा, और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर, थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण, और सब ही उभा पंथ सिर रावल रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवण हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने सकीम बना के रख रखी है, और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहां से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहां से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर, एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे, और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहां आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहां से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले, वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चिती पोले, एक हरि के नाम बिना यो काल मार रहा रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईंट रही सवारे, करते दारा से प्रीतड़ी वाई डहन दूजी बार। कबीर कहां चनाव है मैडिया, ये लंबी भीत उसारे, घर तो साढ़े तीन हाथ भाई गणा तपोने चार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नाशवान स्थान को स्थाई मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहां चिना वह मैडिया कोठियां और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थे, घर तो साढ़े तीन हाथ और घना तो पौने चार। इस टाइम पास करने के लिए श्लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पर और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6-6 मंजिल की बनाकर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहां से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह री भाई ताते लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते राजाओं के, उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया, कहां गए वो खुद भी, कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया, अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री है चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी, उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहां वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी, कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बनकर बैठ गए, तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा दे के सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का, फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। परमात्मा सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहु बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे, अपने घर से भी बाहर कदम बहु बेटियों को नहीं रखने देते थे, उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे, उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है। बीबी पड़ रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो पड़दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सुरायों सोरे। नक बेसर नक पैबनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुनात्मा ये विचार करण की बातें हैं, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी, ये सत प्रतिशत सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे, अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहु बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बनाकर खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और झूठा छोड़ती थी, उनके झूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई, वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई, पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई, यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ जाड़कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहु बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ, वह कुतिया बनकर और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर, अब कहां गई वो इज्जत। तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहां शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बड़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं, वह बीबी पड़ रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा। अब कहते हैं गातु गाड़े फिरती है वह बन कुतिया बाजार, वो पड़दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातु गाड़े फिरती है वह करे सराय सोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है, पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है, आती थी धर्मशाला में, आते थे खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर एक टोक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कब टोक तेरी तरफ डाले, और रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो। तो पुण्यात्मा को कलेजा हिल जाना चाहिए, परमात्मा का दिया ज्ञान है, हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है, और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है, दोनों ही भक्ति करना चाहिए, अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करणी के कारण ये अंसा गया बिगो, जब कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। अब तो लोक लाज में आकर सत्संग में नहीं आता, ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं, जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सुअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले।
नमस्कार सर।
नमस्कार।
क्या शुभ नाम है जी आपका?
रण सिंह दास जी।
कहाँ से आए हैं जी?
फतेहवास गांव डाबी कला, तहसील भट्टू कला।
सर क्या काम करते हैं आप?
खेती बाड़ी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
उससे पहले खेती करते थे, बाकी राजस्थान से एक नाम लिया था, एक 6 महीने रखा वो, लेकिन उससे मेरे कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पर 10 रुपए टिकट काटते थे, फिर प्रसाद चढ़ाओ, फिर गुरु जी के चरणों में दो, 200-300 रुपए किराया लगता था, इसलिए मैंने कहा ये तो ठगी की दुकान है, और मेरा मन वहाँ नहीं लगा।
क्या नाम था आपके गुरु जी का, राजस्थान में कौन सी जगह से नाम लिया था आपने?
दास बोलते हैं, जांसल में गाँव में।
तो क्या भक्ति दी थी उन्होंने आपको?
उन्होंने कुछ नहीं, बस एक नाम दिया था, आनंद 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 विधाता तेरा ही आसरा, और कुछ नहीं।
तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
ये जी नवंबर, आज से 10 महीने पहले मेरे एक गदूज का ऑपरेशन हुआ जी। उस ऑपरेशन से जिंदल में मैंने ऑपरेशन करवाया, वहां से वो कचरा जो था दूरबीन से किया, रोहतक मेडिकल में जो है वो भेजा गया। एक हफ्ते के बाद में रोहतक मेडिकल से जांच करने के बाद में 5 डॉक्टरों ने मेरे को जो है, मेरे जमाई साथ में थे, धूप सिंह धतरवाल डॉक्टर PhD है, वो मेरे जमाई साथ में थे। जब वहां से रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि बाबे का मेजर ऑपरेशन होगा जिसमें 3-4 लाख रुपए भी लगेंगे। तो मेरे को बाहर बिठा दिया था। फिर जब मेरा जमाई आया तो मैंने पूछा क्या बात है, बोला नहीं जी मामूली ऑपरेशन होएगा। तो मैं तो समझ गया मामूली तो नहीं, बहुत बड़ा होएगा। तो मैं फिर डॉक्टर साहब के पास चला गया, मैंने कहा मैं सब अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कमिंग सर, बोले आओ जी। मेरे को स्टूल पे बिठा दिया और पूछने लगे, बोले कोई बात नहीं, 3-4 लाख रुपया लगेगा और मेजर ऑपरेशन हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने फिर डॉक्टर साहब से ये कहा जी आप एक तरफ तो मेरे जमाई को, डॉक्टर साहब को PhD पास है, उनको कह रहे थे कि 70 साल से ऊपर का हम ऑपरेशन रेयर केस करते हैं, तो मेरी तो डॉक्टर साहब उम्र 80 साल हो गई, क्या आप मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो क्या? मेरी इतनी औकात नहीं है, इसलिए मैं जो है वो मेजर ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैंने दुनियादारी देख ली, 80 साल उम्र हो गए, बच्चों के मुंह से जो है वो रोटी का टुकड़ा मैं नहीं छीनना चाहता, इसलिए नमस्कार। मैं बाहर आ गया, मेरी लड़की ने यहाँ नाम ले रखा है गुरुजी से, संतोष नाम है। उन्होंने कहा पिताजी बाद में देखेंगे ऑपरेशन वगैरह, और मेरे को जो है वो मेरी बच्ची ने जो है ज्ञान गंगा पुस्तक दी, कहा आप फालतू टाइम में पिताजी ये पढ़ लिया करो। मैंने सन 56 में हायर सेकेंडरी बॉम्बे से की थी जी। मैंने उस पुस्तक को ज्ञान गंगा को दो बार पढ़ा। उसके बाद में शुक्रवार का दिन था और सितंबर का महीना था, 13 तारीख को मैंने लड़की से फोन किया। मैं कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोला पिताजी हम तो बुरवाड़े जा रहे हैं सत्संग में। मैंने कहा बेटा मैं भी आ रहा हूँ। तो पिताजी आप अभी रहने दो। तो मैंने जो है वो कहा नहीं मैं आऊंगा और आकर के मैं सत्संग गुरु जी का सुनूंगा। मैंने यहाँ आकर के गुरु जी का जो सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद में मैंने यहाँ पर देखा और जिंदगी में वाकई में ज्ञान गंगा जो पुस्तक मैंने पढ़ी जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो बिल्कुल 100% सही हुआ। और वाकई में मेरे दिल ने ये कहा कि अगर सतलोक है तो सतलोक जो है सतलोक आश्रम बरवाड़े धाम के अंदर है। इसलिए मैंने गुरुजी से नाम लिया। नाम लेने के बाद में जब गुरुजी से दर्शन हुए तो गुरुजी ने ये कहा बेटा पहले कहाँ थे? मैंने कहा जी मैंने बरवाड़ ये राजस्थान से नाम ले रखा था। गुरुजी ने मेरे को कहा वहाँ क्यों छोड़ दिया? मगर जी ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ी जो मेरी पत्नी ने मेरे को दी थी उसमें आपने लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर से अगर सही इलाज ना हो आप बेशक दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। इसलिए मैंने वहां से छोड़ करके और आपके चरणों में आया हूं। और आपसे जो है मैं तो ये कहूंगा कि भारत के अंदर ही नहीं संसार में गुरुजी रामपाल जी जो है वो तत्वदर्शी संत नहीं परमपिता परमेश्वर है। वर्ल्ड में अगर कोई संत है कोई परमात्मा है तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा धाम के अंदर है। इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। और मैंने ऑपरेशन करवाया तो गुरुजी कहने लगे कितने दिन की दुआई बाकी है? मगर जी 2 दिन की। बेटा अब दुआई मत लेना। उस टाइम में गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद दिया और उस टाइम में मैंने ऑपरेशन करवाया था। मेरा वजन 60 किलो था, आज 64 किलो 64 किलो वजन है। अच्छी भूख लगती है और कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। उसके बाद में मुझे सतनाम मिला, फिर मैंने मेरे पोते को नाम दिलाया, पोती को नाम दिलाया, घरवाली को नाम दिलाया और आज मेरा सभी परिवार जो है सुख और शांति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी बीमारी ठीक हुई, आपको जो कष्ट था वो दूर हुआ, तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत समाज को तो फिलहाल मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस आदमी का जैसा तजुर्बा हो उसी के हिसाब से दूसरे को गाइड करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ मत समझो। इस दास ने जो है 80 साल की उम्र वैसे ही भाट जोकते जोकते कभी किसी के पास चला कभी कहीं चला गया, लेकिन मुझे को आज तक कोई भी तत्वदर्शी संत 10 महीने से पहले मेरे को कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो पूर्ण परमेश्वर महाराज हो। और मैं यही सभी भक्तों को कहना चाहता हूँ कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला ना समझो। इसलिए मेरा तो यही हाथ जोड़ करके सभी भक्तों से माताओं से यही अरदास है, यही प्रेरणा है, यही संदेश है कि आप जल्दी से जल्दी अपने जीवन का कल्याण करवाएं और सतलोक आश्रम में रामपाल जी महाराज से नाम लेकर के अपना जीवन सफल बनाएं। सत साहेब बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत।